जानकी जी रोते हुए कशिश को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सामने खड़े तीनों लोग बस कशिश को छुड़ाने की कोशिश में लगे थे, पर श्याम जी के सर पर खून सवार था। वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। कशिश का पूरा चेहरा लाल हो गया और सांस फूलने लगी थी। उसकी हालत देखकर ईशान ने पूरा जोर लगाकर गुस्से में चिल्लाते हुए उन्हें कशिश से दूर धकेल दिया। कशिश ने ढाल सी जमीन पर गिर गई तो रजनी उसे संभालने लगी। ईशान का गुस्सा कशिश की हालत देखकर काबू से बाहर जा चुका था। उसने गुस्से में श्याम जी की कॉलर पकड़ ली और चिल्ला पड़ा, इंसान नहीं जल्लाद हैं आप। अब समझ आया मुझे कि कशिश यहाँ आने से इतना डर क्यों रही थी। जिस घर में इंसान नहीं कसाई रहते हैं वहाँ भला वो कैसे आती। ज़रूर आपकी ही वजह से घर छोड़कर भागी होगी वो। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसकी तकलीफ पहुँचाने की। अब आपकी बेटी नहीं मेरी पत्नी है। आपकी उम्र और रिश्ते का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ आपको, पर अगर आप में से कोई मुझे दोबारा कशिश के आसपास भी दिखा या उसे चोट पहुँचाने की कोशिश भी की तो सबको जेल की हवा खिलाने में एक सेकंड का समय नहीं लगेगा मुझे। आज और अभी से कशिश का इस घर और इस घर में रहने वाले लोगों से कोई रिश्ता नहीं। दोबारा कभी गलती से भी इसके आसपास नजर आए तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में सीधा जेल जाओगे। और ये समझने की गलती बिल्कुल मत करना कि वो अकेली है तो जो चाहे कर लोगे उसके साथ। वो अकेली नहीं है, उसके साथ मैं खड़ा हूँ। वो अब पत्नी है मेरी और उस तक पहुँचने से पहले मुझसे टकराना होगा आपको। और महादेव की सौगंध अगली बार छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। उसने गुस्से में उन्हें अंदर की तरफ धकेल दिया जिससे श्याम जी कुछ कदम पीछे चले गए। वो गुस्से से गुरजते हुए वापस ईशान की तरफ बढ़े, पर इससे पहले कि वो ईशान तक पहुंच पाते रजनी ने अपनी पिस्तौल निकालकर उन पर तान दिया। गुस्से से लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए कठोर लहजे में बोली, सोचना भी मत उसे छूने की, वरना एक इंस्पेक्टर के सामने दो लोगों पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में जेल पहुंचा दूंगी आपको और इतनी धाराई लगाऊंगी कि बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। रजनी की धमकी सुनकर हर्ष और श्याम जी दोनों ही चौंक गए। ईशान कशिश के पास बैठ गया जो अभी भी तेज तेज सांस ले रही थी और काफी डरी सहमी हुई सी लग रही थी। फिर ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और परेशान भरी निगाहों से उसे देखते हुए चिंता भरे स्वर में बोला, कशिश तुम ठीक हो? कशिश ने सर घुमाकर उसे देखा और अगले ही पल के झुकाते हुए सहमति में सर हिला दिया। परेशान उसकी आंखों में आई नमी को देख चुका था लेकिन वो समझ नहीं सका कि कैसे उसे सांत्वना दे। उसने कशिश को उठाकर खड़ा किया, फिर रजनी को देखकर बोला, दीदी चलिए यहाँ से, यहाँ कशिश का परिवार नहीं जल्लाद रहते हैं, इन्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। रजनी अभी भी श्याम जी को घूर रही थी, उसने पिस्तौल वापस अंदर रख ली। इसके साथ ही श्याम जी में फिर हिम्मत आ गई और उन्होंने बेहद नफरत से कहा, चलो जाओ हमारे घर से और अगर अपनी जान प्यारी हो तो दोबारा कभी चौखट पर कदम मत रखना। कशिश पलके झुकाए खड़ी रही। ईशान और रजनी दोनों उन्हें गुस्से से घूरने लगे, पर श्याम जी किसी की परवाह ना करते हुए गुस्से में दनादन करते हुए अंदर चले गए। हर्ष भी उनके साथ चला गया। जानकी जी जो तब से मजबूर सी खड़ी तमाशा देख रही थी, उन्होंने अब कशिश को देखा और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, आप जानती थी ना अपने पापा को, फिर जब एक बार इस कैद से आज़ाद हो गई थी तो क्यों आई यहाँ वापस? चली जाइए बेटा, यहाँ से दूर चली जाइए और दोबारा कभी लौटकर यहाँ मत आइएगा। उन्होंने भावुक होकर प्यार से उसके माथे को चूमा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे ईशान की हथेली पर रखते हुए उसे देखकर बोली, कशिश को जानते हैं हम, हमें हमारी बच्ची पर पूरा विश्वास है कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे उनकी माँ की परवरिश पर सवाल उठे। नहीं जानते कि आप दोनों का रिश्ता कैसे जुड़ा, पर अब जब आपने इसका हाथ थाम ही लिया है तो जिंदगी भर उनका साथ निभाइएगा। थोड़ी नादान है, बचपना भी बहुत है इनमें अब भी, पर दिल की अच्छी है, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी। जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी, यहाँ हमारी इज्जत नीलाम की, अब जिस घर जाएगी जाने उस घर का क्या करेगी। खैर जो करना हो करें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, बस जाने से पहले अपना कचरा भी लेकर जाए हमारे घर से, हमें नहीं चाहिए। इनके और इनसे जुड़ी किसी चीज़ के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अचानक आई श्याम जी की नफरत भरी आवाज़ सुनकर जानकी जी घबराकर पीछे हट गईं। बाकी लोग भी घबराकर हड़बड़ाहट में पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने वहाँ एक बड़ा सा बैग फेंक दिया था जो गिरने की वजह से खुल गया था और उसमें रखे कशिश के कपड़े आसपास बिखर गए थे। कशिश जल्दी ही नीचे बैठ गई और अपने कपड़े बैग में रखकर उसे बंद करने लगी। इतने में हर्ष ने कुछ किताबें टॉयज और एक और बैग वहाँ लाकर पटक दिया और जानकी जी को अंदर लेकर कशिश के मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। शायद पहले से उसका सामान पैक कर लिया गया था और फेंकने की तैयारी में ही थे। कशिश ने किताबें, छोटे छोटे टॉयज को दूसरे बैग में डाला और बड़ा सा टेडी अपनी बाहों में भरकर सिसकने लगी। अगले ही पल उसने खुद से अपनी हथेलियों से अपने आंसू पोंछे और उस बड़े से टेडी को लेकर उठकर खड़ी हो गई। अरविंद जी तो यहाँ जो हुआ वो देखकर हतप्रभ से खड़े ही रह गए। शायद पहले कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था और जो कुछ देर पहले हुआ वो उनकी कल्पना से भी परे था, इसलिए वो इतने हैरान थे। रजनी भी यहाँ जो हुआ उससे हैरान रह गई थी, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा भी बर्ताव कर सकता है ये उनकी कल्पना से परे की बात थी। ईशान भी काफी गुस्से में था और उसकी निगाहें कशिश पर टिकी थी। रजनी ने कशिश को देखा और चिंता भरे स्वर में पूछा, कशिश तुम ठीक हो? कशिश ने सर घुमाकर उन्हें देखा और मुस्कुराकर सर दिया, पर उस मुस्कुरान में उसका दर्द छलक रहा था। रजनी उसकी भावनाओं को समझ पा रही थी। उसने सांत्वना देते हुए कहा, तुम यहाँ जो भी हो उसे दिल से मत लो, ये परिवार वैसे भी परिवार कहलाने के लायक नहीं है, अब से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। उसकी बात सुनकर कशिश एक बार फिर बस मुस्कुरा कर रह गई और फिर अपने दोनों बैगों को उठाते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? सुबह की ट्रेन है तो स्टेशन पर ही रात का खाना खाकर वेटिंग रूम में रुक जाएंगे और सुबह वापस बनारस के लिए निकल जाएंगे। वहां जाकर हम तुम्हारी ईशान के साथ धूमधाम से शादी करवाएंगे। आज से हमारा घर ही तुम्हारा मायका होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छे पिता बनने की। अरविंद जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। शायद पहली बार किसी मर्द ने पिता के रूप में इतने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था, इसलिए कशिश कुछ भावुक हो गई पर बाहर से सहज बनी रही और सहमति में सर हिलाते हुए अपना टेडी और दोनों बैग को पकड़ने लगी। पर बीच में ही ईशान उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। रहने दो, तुम अपना टेडी संभालो, बैग मैं ले लेता हूँ। कशिश ने सर घुमाकर उसे देखा और बेफिक्री से सर हिलाते हुए टेडी को अपनी बाहों में थामे आगे बढ़ गई। ईशान अचरज से उसे देखता ही रह गया। कितनी जल्दी वो नॉर्मल हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर सर हिलाकर बैग थामते हुए बाकी सबके साथ चल दिया। टू बी कंटिन्यूड।